بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراجیہ ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے آدرنیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کیجیے۔ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ پوتر قرآن کے سورہ حجرات کی چھٹی اور ساتویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، یدی کوئی ادھرمی کوئی خبر لے کر آئے تو چھان بین کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی گٹ کو انجانے میں کوئی ہانی پہنچا بیٹھو اور پھر تمہیں اپنے کیے پر پشچاتاپ ہو۔ اور جان لو کہ تمہارے بیچ ایشور کے پیغمبر موجود ہیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ یدی پیغمبر ان میں تمہارا کہا مان لیا کریں تو उल्टे तुम ही कठिनाई में पड़ जाओ, परंतु ईश्वर ने तुम्हें ईमान का प्रेम दिया है और उसे तुम्हारे हृदयों में सजा दिया है, और कुफ्र, उल्लंघन और अवज्ञा को तुम्हारे लिए अप्रिय बना दिया है, और ऐसे ही लोग ईश्वर के अनुग्रह और उपकार से सही मार्ग पर हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.ir/hi। हमारे फेसबुक पेज का पता है parstoday.hindi। व्हाट्सएप पर हमारा नंबर है 0098-9035-06549। श्रोताओ, आज शुक्रवार है, जमा दुस्सानी की 22, दय की 15 और जनवरी की 5 तारीख। हमारी समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। आप सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के बाद हम महान कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत की बरसी के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे। और श्रोताओ, सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा पत्र संसार। तो यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे विश्व समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओ, आप सुनिए विश्व समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि इलाके की आज की शांति शहीद सुलेमानी के साहस की देन है। गजा पट्टी में युद्ध के 91वें दिन भीषण लड़ाई हुई। ज़ायनी सेना ने कई नरसंहार किए, जबकि फिलिस्तीनी संघर्षकर्ताओं ने कई ज़ायनी सैनिकों को मार गिराया। यमन के करीब लाल सागर में ड्रोन नौका से हमला हुआ, जिससे अमेरिका और इसराइल को बहुत कड़ा संदेश गया है। पाकिस्तान के सेनेट में आम चुनाव टालने का प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। इस्लामिक गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति सईद इब्राहिम रईसी ने कहा कि इलाके की वर्तमान शांति IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की बहादुरी की देन है। सैयद इब्राहिम रईसी ने किरमान नगर में शहीद कासिम सुलेमानी की बरसी के दिन आतंकी हमले में शहीद होने वाले श्रद्धालुओं के अंतिम संस्कार समारोह में साम्राज्यवाद और आतंकवाद के खिलाफ जंग में शहीद सुलेमानी के महान योगदान को सराहा और कहा कि शहीद सुलेमानी ने साम्राज्यवाद के मुकाबले में इलाके में रेजिस्टेंस नेटवर्क तैयार करके उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि शहीद सुलेमानी ने इलाके में दाइश का अंत कर दिया और इलाके में शांति बहाल की। दरअसल इलाके में अमरीका की एक और इसराइल बनाने की साजिश को शहीद सुलेमानी ने नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि शहीदों के खून की बरकत से इलाके के अवाम बेदार हो चुके हैं और तूफान उल अक्सा ऑपरेशन ज़ायनी शासन का अंत करेगा। इस मौके पर अपने भाषण में IRGC के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि हालिया दशकों में अमरीका को इराक, अफगानिस्तान, लिबनान, सीरिया और यमन में शिकस्त हुई, जबकि ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों में उन्हें शिकस्त उठानी पड़ी और अब स्थिति यह है कि मुसलमानों पर वर्चस्व स्थापित करने का अमरीका के पास कोई मार्ग नहीं है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी गुटों में से एक दाइश ने दक्षिणी ईरान के किरमान में आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी स्वीकार की। बुधवार की शाम IRGC की कुद्स ब्रिगेड के पूर्व चीफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत की बरसी के मौके पर किरमान में भीषण आतंकी हमला हुआ था। इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए 4 जनवरी को दाइश ने एक बयान जारी किया। इस बयान में लिखा गया कि کل ہمارے دو بھائیوں عمر الموحد اور سیف اللہ مجاہد نے کرمان استھت قاسم سلیمانی کے مزار پر شیعوں کی ایک بڑی ساموہک سبھا میں آتم گھاتی حملہ کیا جس میں 300 سے زیادہ انیکیشوروادی شیعہ مارے گئے یا زخمی ہوئے۔ تسنیم نیوز کی رپورٹ کے مطابق داعش ایک تکفیری آتنکی گٹ ہے جسے امریکہ نے جنم دیا ہے اور اسرائیل اسے پال پوس رہا ہے، جو اپنے علاوہ سبھی مسلمانوں کو وہ شیعہ ہوں یا سنی انیکیشوروادی اور کافر کہتا ہے۔ سنیکت راشت سنگھ کی سرکشہ پریشت نے ایران کے کرمان استھت شہید جنرل قاسم سلیمانی کے مزار کے نکٹ ہونے والے آتنکی حملے کی نندہ کی۔ بدھوار کی شام آئی آر جی سی کے قدس بریگیڈ کے پورو چیف کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی کے موقع پر کرمان میں بھیشن آتنکی حملہ ہوا تھا۔ گروار کو ہی سرکشہ پریشت نے اس حملے کی نندہ کرتے ہوئے پیڑتوں سے ہمدردی جتائی اور حملے میں شامل تتوں کو قانون کے مطابق سزا دیے جانے پر بل دیا۔ غزہ پٹی پر زانی شاسن کے حملوں کا 91واں دن پورا ہو رہا ہے۔ اس بیچ خان یونس میں بھی چند لڑائی میں زانی سینا کے ساتھ سینک حماس کی قسام بریگیڈ کے حملے کا نشانہ بن کر ہتاحت یا گھائل ہوئے۔ القسام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اس نے خان یونس میں اسرائیلی سینا کے بلڈوزر کو نشانہ بنایا، جبکہ اس نے جہاد اسلامی سنگٹھن کی سینک شاخہ قدس بریگیڈ کے ساتھ مل کر خان یونس کے مان علاقے میں زائنی سینا کے 3 مرکاوا ٹینکوں کو دھست کر دیا۔ جوہر الدیق علاقے میں بھی زائنی سینکوں پر فلسطینی سنگھرش کرتاؤں نے حملے کیے۔ زائنی سینا نے شکروار کو کہا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں اس کے 14 سینک گھائل ہوئے۔ اس بیچ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اسرائیلی سینک بیت المقدس میں ایک ورد فلسطینی مہیلا اور پرش پر حملے کر رہے ہیں جو نماز ادا کرنے کے لیے مسجد الاقصی جا رہے تھے۔ غزہ پٹی کے سواستھ منترالے نے شکروار کو بتایا کہ زائنی سینکوں کے حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی سنکھیا 22,600 سے ادھک ہو گئی ہے، جبکہ 57,910 فلسطینی گھائل ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں زائنی سینکوں نے 15 نرسنہار کیے، جن میں 162 فلسطینی شہید ہو گئے اور 296 گھائل ہوئے۔ ادھر زائنی شاسن کے ہیریٹیج منتری عمیخا الیاہو نے کہا کہ فلسطینیوں کے لیے ایسے طریقے تیار کیے جائیں جو ان کو موت سے زیادہ پیڑا دینے والے ہوں۔ اس سے پہلے غزہ پٹی پر پرماڑو بم گرانے کا سجھاؤ دینے والے الیاہو نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کو وہاں سے بھاگ جانے پر مجبور کر دینا چاہیے۔ زائنی شاسن کے بھیتر اب بحث شروع ہو گئی کہ 7 اکتوبر کو حماس کے طوفان الاقصی آپریشن کے بارے میں جانچ کے لیے کمیٹی بنائی جائے، مگر اس مدعے پر زائنی پردھان منتری بنیامین نیتن یاہو اور یدھ منتری یواف گالانت آمنے سامنے ہیں۔ نیتن یاہو نے وار کیبنیٹ کی بیٹھک میں موساد کے چیف اور ہوم لینڈ سیکیورٹی سنستھا شاباک کے چیف کو شامل ہونے سے روک دیا، جس کے بعد یدھ منتری سے ان کی بحث ہو گئی۔ اسرائیلی میڈیا نے بتایا کہ گالانت نے نیتن یاہو سے کہا کہ اس طرح کی حرکتوں سے اسرائیل کی سرکشا کو نقصان پہنچے گا، مگر نیتن یاہو اور گالانت نے کسی وواد سے انکار کیا اور کہا کہ وہ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ویسے دونوں کے بیچ وواد کی خبریں بار بار آ رہی ہیں۔ ولا ویب سائٹ نے رپورٹ دی کہ جانچ ٹیم کے مدعے پر چیف آف آرمی اسٹاف اور کئی منتریوں کی بھڑنت ہو گئی، جس کی وجہ سے نیتن یاہو کو بیٹھک رد کرنی پڑی۔ ترکی نے انتراشٹری عدالت میں اسرائیل کے خلاف دکشن افریقہ کی یاچیکا کا آدھیکارک روپ سے سمرتھن کیا ہے۔ دکشن افریقہ نے انتراشٹری عدالت میں اسرائیل کے خلاف غزہ یدھ میں نردوش لوگوں کے نرسنہار کے خلاف شکایت کی۔ ترکی کے ودیش منترالے نے ایک بیان جاری کر کے کہا کہ انکارا دکشن افریقہ کی شکایت کا سمرتھن کرتا ہے، جس میں فلسطینیوں کے نرسنہار کی بات کہی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ یدھ میں اسرائیل 22,000 سے زیادہ فلسطینیوں کا نرسنہار کر چکا ہے، جن میں ادھکانش بچے اور مہیلائیں ہیں۔ اسے اپنے اس اپرادھ کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ فرانس کی ایک عدالت نے الجیریائی فٹ بالر یوسف اتیل کو غزہ میں اسرائیل کے نرسنہار سے سمبندھت سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کو شیئر کرنے کے جرم میں 8 مہینے کے نلمبت جیل کی سزا سنائی ہے۔ نیس اپرادھک عدالت نے بدھوار کو اپنے فیصلے میں کہا کہ 27 ورشیہ فٹ بالر نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو ساجھا کیا جسے دھرم کے آدھار پر نفرت بھڑکانے کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اتیل فرانس کی لیگ نیس 1 کے لیے کھیلتے ہیں۔ عدالت نے ان پر 49,000 ڈالر کا جرمانہ بھی لگایا ہے۔ یمن کے انصار اللہ آندولن نے گروار کو لال ساگر میں ڈرون نوکا کا دھماکہ کیا، یہ کہنا ہے امریکی نوسینا کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انصار اللہ نے امریکہ اور زائنی شاسن دونوں کو سندیش دے دیا ہے کہ وہ یمنی فورسز پر حملے کرنے سے پہلے بار بار سوچیں، ورنہ بہت ادھک نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حال ہی میں امریکی نوسینا کی یدھ پوت نے یمنی نوسینا کی چھوٹی نوکاؤں پر حملہ کر کے 10 سینکوں کی हत्या कर दी थी। यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन के सैनिक लाल सागर से गुजरकर इसराइल जाने वाले जहाजों को कई बार निशाना बना चुके हैं। यमन की सना सरकार का कहना है कि गजा पट्टी पर ज़ायनी शासन के बर्बर हमलों और गजा पट्टी की ज़ायनी शासन द्वारा नाकाबंदी के जवाब में वे लाल सागर से गुजरकर इसराइल जाने वाले जहाजों को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान में आगामी 8 फरवरी को होने वाले चुनाव टालने के लिए प्रस्ताव सेनेट में बहुमत से पारित हुआ। पीटीवी ने रिपोर्ट दी कि ऊपरी सदन में 8 फरवरी 2024 को होने वाले चुनाव टालने का प्रस्ताव खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर दिलावर खान ने पेश किया था, मगर अहम बात यह है कि जिस समय यह प्रस्ताव सदन में पेश किया गया केवल 14 सांसद मौजूद थे और कोरम पूरा नहीं था। दिलावर खान ने कहा कि देश में भीषण सर्दी का मौसम है और राजनीतिक दलों को इस बात पर चिंता है। उनका कहना था कि कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं को सुरक्षा के खतरे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रैलियों पर हमलों का सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया और उनका कि इस समय कोरोना का मामला भी शुरू हो गया, इसलिए 8 फरवरी के चुनाव टाल देने चाहिए। कतर में मौत की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों की सजाओं में कमी की गई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नौसेना के जिन 8 पूर्व अफसरों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई थी, अब उनकी सजाएं कम करके उन्हें अलग अलग मुद्दत की सजाएं सुनाई गई हैं और इन सजाओं के खिलाफ अपील करने के लिए उन्हें 60 दिन की मोहलत दी गई है। हाल ही में कतर की अदालत ने 8 अफसरों की मौत की सजा में कमी करने का ऐलान किया था। दोनों ही देशों के सरकारी विभागों की ओर से इस बारे में कोई ब्यौरा नहीं आया है कि उन्हें ये सजाएं किस अपराध में सुनाई गई हैं, लेकिन रॉयटर्स सहित कुछ मीडिया संस्थानों का कहना है कि भारतीय पूर्व नौसैनिक अफसरों को इसराइल के लिए जासूसी करने के अपराध में ये सजाएं सुनाई गई हैं। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा के साथ मैं अख्तर रिजवी आपकी सेवा में उपस्थित हूं, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारी आज की चर्चा के विषय हैं किरमान आतंकी हमला, दाइश ने ली जिम्मेदारी लेकिन असली जिम्मेदार कौन है, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तनाव बढ़ा और भारत नियंत्रित कश्मीर में झड़पों का सिलसिला यथावत जारी। तो सबसे पहले किरमान आतंकी हमले पर हम चर्चा करेंगे। ईरान के किरमान प्रांत में होने वाले आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी गुट दाइश ने स्वीकार कर ली है, लेकिन दाइश ने जो बयान जारी किया है उसमें कई तरह का झोल पाया जाता है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी अहमद अब्बास।
ईरान के किरमान प्रांत में शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर आतंकवादी हमले की योजना ज़ायनी शासन ने बनाई थी और इस हमले को ISIS यानी दाइश के तकफीरी एजेंटों की मदद से अंजाम दिया गया। किरमान प्रांत में प्रतिरोध के शहीदों के मज़ारों की ओर जाने वाले रास्ते पर आतंकवादी हमले के एक घंटे बाद ही मीडिया में हमले का आरोप ज़ायनी शासन पर लगाया जाने लगा और इस जघन्य अपराध पर ईरान के मुंहतोड़ जवाब के बारे में अटकलें भी लगाई जाने लगीं। इस कार्रवाई के खतरनाक परिणामों से बचने के लिए हमले के कुछ घंटों बाद ज़ायनी शासन ने ISIS के खलीफा को इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार करने का आदेश दिया, जबकि इस हमले के कुछ ही मिनट बाद ज़ायनी शासन के कुछ अधिकारियों और इससे जुड़े तंत्रों की टिप्पणियां सामने आने लगीं और इन टिप्पणियों से ही पता चलने लगा कि ईरानी जनता के खिलाफ इस हमले का मुख्य जिम्मेदार ज़ायनी शासन है। یہ گتھی اس سمے کھلی جب کرمان کے گلزار شہدا قبرستان کے راستے پر حملے کے اپرادھ کو سویکار کرنے میں IS کے اس بیان میں اور اس تکفیری گروپ کے دوسرے بیانوں میں کافی بنیادی انتر پائے گئے اور ہم ان میں سے کچھ مدبھیدوں کی اور اشارہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ IS یا داعش دوارا اپنے بیانوں میں ایران شبد کا استعمال کرنے کا کوئی اتہاس نہیں ہے، بلکہ یہ تکفیری گروپ ہمیشہ ایران کو بلاد فارس یا ولایت خراسان کہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کارروائی کے دوران مارے گئے آتنکوادی کی تصویر دھندلے روپ میں جاری کرنے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ IS کارروائی کی ذمہ داری سویکار کرنے کا بیان کبھی بھی 30 گھنٹے کی دیری سے جاری نہیں کرتا، بلکہ ہر کارروائی سے پہلے IS اپنی بیعت یا نشٹھا کی پرتیجا اور ذمہ داری سویکار کرنے کے بیان کی تصویریں بھی تیار کرتا ہے اور اسے حملے کے ترنت بعد جاری کر دیتا ہے۔ مول روپ سے کارروائی کرنے کے لیے IS کا طریقہ پہلے دھمکی، پھر فتویٰ اور پھر کارروائی، اور اس کے بعد کارروائی کی ذمہ داری سویکار کرتے ہوئے ترنت بیان جاری کرنا ہے، جبکہ اس کارروائی میں آرمبھ میں ایک آتنکوادی حملہ ہوا اور پھر فتویٰ، دھمکی اور بیان دیری سے جاری کیا گیا۔ چوتھی بات یہ کہ اس بیان کا راجنیتک ساہتیہ ہے جو مول روپ سے IS کے سامان ساہتیہ سے الگ ہے، اور اس سے یہ اسپشٹ ہے کہ بیان تیار کرنے والا کسی بھی طرح سے IS سے سمبندھت نہیں تھا۔ واستو میں داعش نے کرمان میں آتنکی گھٹنا کی ذمہ داری سویکار کرنے میں دیری کے ساتھ ہی جو بیان جاری کیا وہ زیانی شاسن کی خفیہ ایجنسی دوارا تیار کیا گیا تھا، اور داعش کا خلیفہ کیول اپنے آدھیکارک میڈیا کے مادھیم سے اسے جاری کرنے کا ذمہ دار تھا۔ زائنیوں کا یہ کرت سب سے پہلے اپنے کرتیوں کے دشپریناموں کے ڈر اور بھے کو درشاتا ہے، اور یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ تکفیری آتنکوادی گٹ IS واسطوں میں زائنی شاسن کا ایک چیلا اور ہتھ کنڈا ہے۔
اور اب رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ بھارت نیانترت کشمیر کے شوپیاں شیتر میں سرکشا بلوں اور چھاپا ماروں کے بیچ ایک جھڑپ ہو رہی ہے۔ اور بھی ان وشیوں کے ساتھ شری نگر سے ہمارے سمواددتا سپتے محمد حسن۔
دکشنی کشمیر کے شوپیاں کے ایک نکٹوردی چھیتر میں بھارتی سرکشا بلوں نے ایک وشیش سوچنا پراپت ہونے کے بعد اس چھیتر کا گھیراؤ کیا اور تلاشی ابھیان آرمبھ کیا، جس کے بیچ گھیرے میں آئے الگاؤں وادی چھاپا ماروں اور سرکشا بلوں کے بیچ ایک زبردست مڈبھیڑ آرمبھ ہوئی جو ابھی جاری ہے۔ اس مڈبھیڑ میں ایک الگاؤں چھاپا مار کے ہتات ہونے کی سوچنا ہے۔ پولیس اور سرکشا بلوں کے پروکتا نے کہا کہ اس چھیتر میں انہیں یہ سوچنائیں پراپت ہو رہی تھی کہ یہاں پر الگاؤں وادی چھاپا مار کئی دنوں سے سکریہ ہو گئے تھے اور انہوں نے ان کا ٹریپ رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہی انہیں یہ سوچنا پراپت ہوئی کہ یہاں پر یہ چھپے بیٹھے ہیں تو سرکشا بلوں نے اس چھیتر کا گھیراؤ کیا اور تلاشی ابھیان آرمبھ کیا، جس کے بیچ گھیرے میں آئے الگاؤں وادی چھاپا ماروں سے یہ کہا گیا کہ وہ آتم سمرپن کریں، پرنتو انہوں نے اندھا دھند گولیاں چلائی جس کا اتر سرکشا بلوں نے بھی دیا۔ اس طرح ایک مڈبھیڑ آرمبھ ہوئی جو ابھی جاری ہے۔ اس میں ایک الگاؤں وادی چھاپا مار ہتات ہوا جس کی ترنت پہچان نہیں ہوئی۔ سرکشا بلوں کے پروکتا نے ایک بار پھر یہ بات کہی ہے کہ الگاؤں واد اور آتنکواد کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور جو بھی اس راہ پر چلے گا اس کے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگ شانتی چاہتے ہیں اور جو بھی شانتی میں بادھا ڈالنے کا پریاس کریں گے ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کا جو سمرتھن سرکشا بلوں کو پراپت ہے اسی سے جموں کشمیر میں شانتی سمبھو ہوئی ہے، اور ہمارا ماننا ہے کہ بہت جلد پوری طرح سے جموں کشمیر میں شانتی استھاپت ہوگی، جس میں لوگوں کا بڑا یوگدان ہوگا، کیونکہ لوگ ان کے انوسار صرف اور صرف تعمیر و ترقی چاہتے ہیں اور شانتی چاہتے ہیں۔ اس بیچ آل انڈیا استر پر جو واہنوں کے چالکوں نے سٹرائک کال دی ہے وہ جاری ہے۔ نیشنل کانفرنس کے پروکتا نے اس سٹرائک کے حوالے سے کہا کہ جو نیا قانون لایا گیا ہے وپکشی دلوں نے مانگ کی تھی کہ اس پر وچار ومرش ہونا چاہیے، پرنتو اسے پاس کر دیا گیا، اب اس کی جو کانسیکوینسز ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے سٹرائک سے عام لوگ پربھاوت ہوئے ہیں، پرنتو ان کے انوسار یہ سرکار ہے کہ جو سننا نہیں چاہتی ہیں۔ اس اوسر پر نیشنل کانفرنس کے پروکتا نے پترکاروں کے ساتھ وارتا کرتے ہوئے کہا،
دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جب کوئی لا بنتا ہے، لوگ بنتا کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کی آسائش کے لیے، تاکہ ان کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر کچھ کسی طریقے سے کوئی فائدہ ملے۔ یہ جو لا ہے پہلے تو جس سے آپ سب لوگ آج کے جو ڈیمانڈ ہے لوگوں کی کہ اس پہ ڈسکشن نہیں ہوا، میرے حساب سے جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے ان کو پہلے جو ٹرانسپورٹرز ہیں उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ किसी तरीके से वो डायलॉग होना चाहिए कि ये लॉ का इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रोस और कॉन्स है। अगर इसमें कहीं भी कोई खदशात है ट्रांसपोर्टर्स की तो गवर्नमेंट को सुनना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक दूसरा पहलू है जो ये स्ट्राइक और चक्का जाम का है। चक्के जाम में क्या होता है कि लोगों को बहुत सारी मुश्किलात होती है। अगर आपने कल से देखा होगा यहाँ जो पेट्रोल पंप है या गैस एजेंसी है, हर किसी जगह एक शॉर्टेज क्राइसिस हो गई। एक क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट को इनके साथ डायलॉग प्रोसेस करने के लिए।
सिप्ति मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
और अब रुख करते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान का।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। ये तनाव सीमा रेखा को लेकर दोनों पक्षों के बीच अपने चरम पर पहुंच चुका है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम।
अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने अफगानिस्तान से एक प्रतिनिधि मंडल की पाकिस्तान यात्रा की पुष्टि की और कहा कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के अधिकारी विवादों के समाधान, विशेषकर ड्यूरेंट रेखा पर सीमा विवादों पर चर्चा करेंगे। काल्पनिक ड्यूरेंट लाइन और सीमा सुविधाओं की स्थापना जैसे मुद्दों पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई वर्षों से मतभेद चले आ रहे हैं और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आतंकवाद का समर्थन करने का भी आरोप लगाते रहे हैं। वास्तव में ड्यूरेंट सीमा रेखा भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्यवाद काल का एक अवशेष है, जिसका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच रेखांकन एक गहरे ऐतिहासिक मतभेद का आधार है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंधों को उस तरह से बढ़ने नहीं देता जैसे संबंधों को होना चाहिए। यह सीमा 1893 में मोहम्मद उमर गुलाबी और अब्दुल रहमान खान के समय मोर्टिमर ड्यूरेंट के नेतृत्व में अफगानिस्तान और ब्रिटिश भारत के बीच निर्धारित की गई थी। यह ऐसी हालत में है कि जब पिछले दो वर्षों में इस मुद्दे पर घातक सीमा संघर्ष कई बार दोनों देशों के लिए समस्या बन चुका है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा है कि पिछली बैठकों के बाद इस बैठक में दोनों देशों के बीच ड्यूरेंट रेखा पर लगातार हो रहे संघर्षों के समाधान और सीमा के दोनों ओर के निवासियों के लिए सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में निर्णय लिए जाएंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद से दो वर्षों तक पाकिस्तान सरकार ने हमेशा ये दावा किया है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सदस्यों ने अफगानिस्तान से उनके देश के खिलाफ घातक हमले किए हैं। इस दावे को अफगान तालिबान सरकार ने बारंबार खारिज किया है। तालिबान सरकार का कहना है कि अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने में असमर्थता के लिए पाकिस्तानी अधिकारी अफगानिस्तान पर दोष न मढ़ें। अफगान तालिबान का मानना है कि पाकिस्तान ने सीमा पर पाकिस्तान तहरीक तालिबान के तत्वों की मौजूदगी के फर्जी मुद्दे का इस्तेमाल करके काबुल सरकार पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान में रहने वाले 17 लाख अफगान शरणार्थियों को निर्वासित करने की योजना बनाई है। पाकिस्तान सरकार ने पिछले दो महीनों में ड्यूरेंट सीमा रेखा के दोनों ओर सीमावासियों की आवाजाही को रोककर सीमावासियों के लिए कठिन परिस्थितियां भी पैदा कर दी हैं। ऐसे में पिछले दो वर्षों के दौरान ड्यूरेंट रेखा पर सीमा सुविधाएं और चौकियां स्थापित करने के पाकिस्तान के प्रयासों को बारंबार तालिबान के सीमा सुरक्षा बलों की ओर से जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा और इन संघर्षों से दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ने पिछले दशकों में एक दूसरे के खिलाफ शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। इसलिए काबुल और इस्लामाबाद के लिए एकमात्र उचित तरीका यह है कि वे इस कानूनी और ऐतिहासिक मुद्दे को समाप्त करने और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भयावह विरासत को हटाने के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें। यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ सीमा विवादों पर चर्चा के लिए अफगान तालिबान की तत्परता की हालिया घोषणा, यदि इस्लामाबाद आतंकवाद मामले को गंभीरता से लेता है तो द्विपक्षीय संबंधों में तनाव को कम करने और इस ऐतिहासिक सीमा विवाद को सुलझाने के लिए आधार बन सकता है। इसलिए दोनों पक्षों को इस अवसर से बेहतरीन तरीके से लाभ उठाना चाहिए।
और इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, आपने सुना कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, और अब आपकी सेवा में प्रस्तुत है महान कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत की बरसी के उपलक्ष्य में हमारा विशेष कार्यक्रम। अनमोल रत्न।
दोस्तों, कार्यक्रम अनमोल रत्न में ईरान के महान योद्धा जनरल कासिम सुलेमानी पर विशेष कार्यक्रम की दूसरी कड़ी के साथ आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हैं। स्वाति और रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, ईरान के महान योद्धा शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में पेश किए जाने वाले विशेष कार्यक्रम की इस दूसरी कड़ी में हम शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की ईरान की इस्लामी क्रांति और पवित्र प्रतिरक्षा में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, जब ईरान में इस्लामी क्रांति की लहर बनी तो अलग अलग शहरों में हर कोई क्रांति और इमाम खुमैनी रहमतुल्ला अलैह के बारे में बात करने लगा। किरमान प्रांत के रॉबोर गांव के नज़दीक कनातुल मलिक नामक क्षेत्र में लोगों को इस्लामी क्रांति से परिचित कराने के लिए कोई मीडिया स्रोत नहीं था। उस समय प्रतिभाशाली और जोश से भरे युवा कासिम सुलेमानी ने गांव के लोगों को इमाम खुमैनी रहमतुल्ला अलैह और क्रांति से परिचित कराया, और न केवल क्रांतिकारी घोषणाएं गांव के लोगों तक पहुंचाई बल्कि यहां तक कि इमाम खुमैनी की पहली तस्वीर भी गांव तक पहुंचाने वाले कासिम सुलेमानी ही थे। वो क्रांति के दौरान किरमान में आयोजित होने वाले विरोध मार्च और हड़तालों के मुख्य आयोजकों में से एक थे।
दोस्तों, युवा कासिम सुलेमानी ने उन दिनों में से अपनी यादों का वर्णन इस प्रकार किया है। यह 1978 का अंत था। काफी समय तक मैंने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए परीक्षा दी और प्रयास किया। अंत में परीक्षा में पास हो गया। मैं अपना लाइसेंस लेने के लिए यातायात केंद्र गया। वहां आजरी नसब नाम का एक अधिकारी था। उसने मुझे संबोधित करते हुए कहा, आ जाओ, तुम्हारे लाइसेंस पर इमाम खुमैनी के हस्ताक्षर कर दिए हैं, तैयार है और ले जाओ। मुझे इसके द्वारा किया गया कटाक्ष कुछ खास समझ नहीं आया। वह मुझे एक कमरे में ले गया। दो अन्य सामान्य लोग अंदर आए और मुझसे गंदी गंदी गाली गलौज करने लगे। मैं उनसे घिरा हुआ था और भागने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने थप्पड़ मारे, लात मारी और ऐसे ऐसे अपशब्द का प्रयोग किया जिसे मैं बता भी नहीं सकता था। कासिम सुलेमानी बताते हैं कि मुझे मारते हुए उन लोगों ने मुझसे कहा कि तुम रात में दीवारों पर नारे लिखती हो। उन्होंने मुझे इतनी जोर से मारा कि मैं जमीन पर गिर गया। मेरी नाक और चेहरे से खून बह रहा था।
कासिम सुलेमानी बताते हैं कि मुझे मारने वालों में से एक मेरे पेट पर अपने बूट के साथ खड़ा हो गया और मेरे पेट पर इतनी जोर से मारा कि मुझे लगा कि मेरे अंदर का सारा हिस्सा नष्ट हो गया है। एक एथलीट होने और कराटे और जिम में कठिन ट्रेनिंग के बावजूद मेरी ताकत खत्म हो गई और मैं बेहोश हो गया। मैं दर्द के कारण 3 दिन तक खाना नहीं खा सका, लेकिन मुझे अंदर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। पिटाई और प्रताड़ना का डर खत्म हो गया था। मैं सोचता था कि जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब क्या बचा है। इस घटना ने मुझ पर ऐसा प्रभाव डाला कि हर झटके और लात के साथ खुमैनी शब्द मेरे अंदर गहराई तक समा गया। मैं जवानी के जोश से इतना भरा हुआ था कि मुझे किसी भी चीज का डर नहीं था। अब मैं फौलाद बन चुका था और क्रांति के शोले मेरे अंदर भड़क रहे थे और मैं बिना किसी डर के बात कर रहा था।
शहीद कासिम सुलेमानी ईरान की इस्लामी क्रांति को हमेशा एक अद्भुत घटना मानते थे और इस पर हमेशा जोर देते थे। इस्लाम भी वह स्तंभ था जिसने कई दशकों तक इस क्रांति को सफल बनाया। आज ईरान पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा द्वारा लाए गए इस्लाम धर्म पर निर्भरता के कारण ही सभी षड्यंत्रों को परास्त करने में सक्षम है। महान इस्लामी क्रांति की सफलता के साथ कासिम सुलेमानी सेना में शामिल हो गए और कुछ समय के बाद इराक द्वारा ईरान पर 8 वर्षों के लिए थोपा गया युद्ध शुरू हो गया। वह और उनके दोस्त क्रांति के आदर्शों की रक्षा के लिए युद्ध के मोर्चों पर चले गए और मातृभूमि की रक्षा के लिए एक वफादार सैनिक के रूप में अपने दिल और आत्मा के साथ समर्पित हो गए। पवित्र प्रतिरक्षा ईरानी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और अनोखे पन्नों में से एक है, क्योंकि ईरान के इतिहास के इस काल में इस्लामी क्रांति की संस्कृति और विचारों के साथ कुछ हस्तियां प्रमुखता से उभर कर सामने आई और उन्होंने धार्मिक और इस्लामी जीवन शैली के कुछ विशेष तरीकों को मानव समाज के सामने रखा।
पवित्र रक्षा की संस्कृति में प्रतिष्ठित और अग्रणी शख्सियतों में से एक देश के सैनिक, देश के महान शहीद जनरल कासिम सुलेमानी हैं। एक क्रांतिकारी व्यक्ति जिनकी युद्ध और संचालन की रणनीति और प्रबंधन में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जटिल सैन्य, राजनीतिक और यहाँ तक कि सांस्कृतिक समीकरणों को प्रभावित किया। ईरान की इस्लामी क्रांति के बाद कासिम सुलेमानी 1979 में इस्लामी क्रांति के संरक्षक बल IRGC में शामिल हो गए और किरमान गार्ड के कुछ ट्रेनिंग बैरेट की प्रशिक्षण इकाई के सदस्य और फिर प्रशिक्षक बन गए। ईरान के विरुद्ध इराक द्वारा थोपे गए युद्ध के लिए ईरानी कमांडरों में से एक जनरल कुर्बानी युद्ध के मोर्चे पर शहीद कासिम सुलेमानी की उपस्थिति के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि ऑपरेशन की रात हमारे युद्ध के मोर्चे पर आने से पहले वो आए और बोले, मुझे स्वयं सैनिकों के साथ जाना होगा। जनरल कुर्बानी कहते हैं कि मैं कासिम सुलेमानी की इस बात से बहुत सहमत नहीं था। मैंने उनसे कहा कि अपना प्रतिनिधि भेजें, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं खुद जाना चाहता हूं।
इस बीच ऑपरेशन कोड की घोषणा कर दी गई और कासिम सुलेमानी भी इस ऑपरेशन में शामिल सैनिकों के साथ लाइन में खड़े हो गए। दुश्मन भारी गोलाबारी कर रहा था। कासिम सुलेमानी की बटालियन मोर्चे की पहली पंक्ति को तोड़ते हुए दूसरी पंक्ति की ओर बढ़ गई। ज्यादा देर नहीं हुई जब खबर आई कि बटालियन कमांडर शहीद हो गए। मैंने कुछ लोगों को भेजा और उनसे कहा कि वे किसी भी तरह उन्हें वापस ले आएं। मैंने उसे आपातकालीन कक्ष में देखा और वे बेहोश थे। गोली ने उनके दाहिने हाथ को काफी नुकसान पहुंचा दिया था। उनके सीने में भी छर्रे लगे हुए थे, खून लगातार बह रहा था। मैंने एम्बुलेंस को आने और उन्हें आवाज भेजने के लिए कहा। दिलचस्प बात यह है कि ऑपरेशन के 20 दिन के बाद मैंने कासिम सुलेमानी एक बार फिर शिविर में देखा। उन्हें अहवाज से तेहरान ले जाया गया जहां उनके हाथ की चोट का इलाज हुआ। वह अभी तक ठीक से अच्छे भी नहीं हुए थे कि अपनी गर्दन पर हाथ लटकाए हुए युद्ध के मोर्चे पर वापस लौट आए थे।
जनरल कुर्बानी कहते हैं कि मैंने बिना समय गवाए उन्हें वहीं श्री मोहसिन रजाई से मिलवाया और बताया कि ये श्रीमान सुलेमानी बहादुर और शक्तिशाली دونوں ہیں۔ یہ پوری ایک بریگیڈ کی ذمہ داری آسانی کے ساتھ اچھے سے نبھا سکتے ہیں۔ شری محسن رضائی نے وہیں سار اللہ بریگیڈ کی کمان ان کو سونپے جانے کا آدیش جاری کر دیا۔ وہ عراق اور ایران کے بیچ یدھ میں والفجر 8، کربلا 4 اور کربلا 5 آپریشنوں کے کمانڈروں میں سے ایک تھے اور دو بار گھائل ہوئے تھے۔ ایک بار بہت ہی گمبھیر چوٹیں آئی تھیں۔ دنیا کے سبھی کلاسک یدھوں میں کمانڈروں کے لیے اگریم پنکتی میں اپنی سینا سے 20 سے 30 کلومیٹر دور رہنے کی پرتھا ہے، لیکن شہید جنرل قاسم سلیمانی سبھی آپریشنوں میں سینکوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہنا پسند کرتے تھے۔
युद्ध के मोर्चों पर शहीद कासिम सुलेमानी के साथ रहने वालों का कहना है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी ऑपरेशन शुरू हुआ हो और जनरल कासिम सुलेमानी अग्रिम पंक्ति में खड़े हुए दिखाई न दिए हों। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी के साथ युद्ध के मोर्चे पर साथ रहने वाले एक उनके करीबी जनरल का कहना है कि आबादान शहर के घेराव से लेकर युद्ध के अंत तक किसी भी ऑपरेशन के बारे में मुझे याद नहीं है कि जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी अग्रिम पंक्ति में विशेषकर स्वयंसेवी बलों के साथ न रहे हों।
वो एक वरिष्ठ कमांडर और जनरल होने के साथ साथ सभी छोटे बड़े सैन्य अधिकारियों, जवानों और सामान्य कर्मियों के दोस्त भी थे। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो कमांडर के रूप में एक महान कमांडर थे और दोस्त के रूप में उनसे अच्छा दोस्त मिलना संभव नहीं था। आप ऐसे किसी भी सेनापति को शायद ही जानते हों कि जो अपने सभी 1500 सैनिकों और योद्धाओं को नाम से जानता और पहचानता हो। दुनिया जहां उन्हें एक महान कमांडर के रूप में याद करती है, वहीं वो खुद को अंतिम सांस तक एक सामान्य सैनिक मानते रहे और न केवल अपने देश की रक्षा बल्कि मानवता की रक्षा के लिए ईमानदारी से अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करते रहे। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है। हमें अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है इस समय की सभा का अंतिम कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार।
दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपने भैया रविश जैदी और दीदी मरियम मेहरदादी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे और सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
बिल्कुल दीदी, आप शुरुआत में ही इतनी सारी दुआएं दे देती हैं कि मुझे लगता है, मैं भी कभी कभी सोचता हूं कि हर दिन जब भी आप मुझे देखें,
आपको वैसे ही दुआ देती हूं।
ये बात दीदी ने बिल्कुल सही कही है। और एक बात मैं अपने श्रोताओं को बताता चलूं कि दीदी जिसको भी दुआ देती हैं वो जो है स्वीकार जरूर होती है और उसके लिए, उसके भले के लिए होती है। तो मैं भी अक्सर जो है वो अपनी दीदी मरियम मेहरदादी से आशीर्वाद प्राप्त करता रहता हूँ। तो इसी तरह आप भी अपना यानी दीदी से अपना आशीर्वाद प्राप्त करते रहा कीजिए और ताकि आप अपने जीवन में सुखी रहें और अच्छा जीवन आप व्यतीत करते रहें।
जी, चले चलते हम अपने श्रोताओं के ईमेल और ये पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम से आरएस विजय कुमार लिखते हैं कि रेडियो तेहरान हिंदी सेवा के सभी साथियों को मेरा नमस्कार व सलाम। मेरा नाम आरएस विजय कुमार है और मैं भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के सबसे बड़े एवं खूबसूरत तटवर्ती शहर विशाखापत्तनम से आपसे मुखातिब हूँ। मैं अपना परिचय पुनः इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कई अरसे के बाद आपसे पुनः पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से सन 1990 से आपके हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा के कार्यक्रमों को सुनता आ रहा हूँ। पत्र भी नियमित रूप से तो नहीं पर ज़रूर लिखा करता था। अब तो स्मार्टफोन का ज़माना है, ईमेल व्हाट्सएप का ज़माना है, टेक्नोलॉजी तो काफ़ी हद तक विकास की ओर अग्रसर होती जा रही है। मेरी उम्र 60 वर्ष है और हाल ही में मैं भारतीय रेलवे से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मुझे देश विदेश के रेडियो प्रसारणों को सुनकर उनसे पत्र व्यवहार करने का बड़ा शौक है। आजकल आपके हिंदी प्रसारण भारतीय समय के अनुसार रात 7:50 पर 31 मीटर बैंड बराबर 9800 किलोहर्ट्ज़ पर सुनाई दे रहे हैं। प्रसारण का सिग्नल स्ट्रेंथ तो ठीक है मगर उसकी फ्रीक्वेंसी पर रेडियो यमन के अरबी भाषा में प्रसारण होते हैं जिससे कि रेडियो तेहरान को के हिंदी कार्यक्रम में थोड़ा इंटरफेरेंस होता है।
सबसे पहली बात तो दीदी हम कहेंगे कि अपने विजय कुमार जी से
जी।
कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और रेडियो हिंदी के आप बहुत ही पुराने श्रोता हैं और दूसरे ये कि आप रिटायर्ड हो गए हैं तो उसके बाद आपका एक यात्रा तो बनती है आप ईरान। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप ईरान तशरीफ लाएं। क्यों इसलिए मैं कह रहा हूं कि विशाखापट्टनम जो है दीदी आप
वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ेगी,
अब तो वीजा की जरूरत नहीं है। दूसरे ये कि आपको आपका भी जो है थोड़ा बहुत संबंध उस क्षेत्र से है
जी, वैसे थोड़ा बहुत फासला है लेकिन
हाँ फिर भी थोड़ा संबंध है। और विशाखापट्टनम के बारे में जहां तक मुझे जानकारी है और एक बार मुझे जाना भी वहां हुआ है, बहुत ही खूबसूरत जगह है
जी,
बहुत ही देखने लायक जगह है और भारत में वैसे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जगह है और बहुत ही अच्छे अच्छे स्थान है जहाँ पर लोग जाते हैं घूमने फिरने तमाम। तो मैं आपको एक और अपने श्रोता से ये कहना चाहूँगा, एक सफर आप जो है वो ट्रेन से तो नहीं लेकिन हवाई जहाज पर बैठ के ईरान आइए और ईरान की जो रेल यात्रा है उसका भी आप आनंद लीजिए
जी।
जी श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं इस वक्त अपना मनपसंद कार्यक्रम पत्र संसार और एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हों और आपको अगर हिंदी भाषा आती है और इस समय आप हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट parstoday.ir/hi पर ज़रूर विजिट किया कीजिए। उस पर आपको ताज़ा खबरें मिलेंगी और बहुत सारी मालूमात बहुत सारी जानकारियां जो आप चाहते हैं और विशेषकर जो भी ताज़ा स्थिति होती है और पश्चिमी एशिया की जो घटनाक्रम होते हैं उस पर हम बहुत ही ज़्यादा ध्यान अपना केंद्रित करते हैं। तो आपको पश्चिमी एशिया की फिलिस्तीन की सीरिया की आपको इराक की ईरान की संबंधित जो भी खबरें होंगी बिल्कुल सच्चाई और सटीकता से हम इन खबरों को पेश करते हैं। तो आप जहां जहां भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप ज़रूर हमारी साइट पर आइए, उस पर विज़िट कीजिए और उस पर हमारी जो हमारे द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रमों खबरों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो चलते हैं दीदी के पास और दीदी बहुत देर से हमारा इंतज़ार कर रही हैं सांस्कृतिक से जुड़ी हुई खबर को लेकर। तो दीदी जल्दी से आप अपनी खबर के बारे में बताइए
जी। अभी हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, ऐतिहासिक महत्व और सांस्कृतिक समृद्धि से भरपूर मध्य ईरानी शहर यज़्द को एशियाई संवाद मंच ACD के सदस्य देशों के बीच पर्यटन राजधानी के रूप में सम्मानित किया गया है। ACD के भीतर अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं और सहयोग के लिए यज़्द को केंद्र बिंदु के रूप में चिन्हित करने वाली ये घोषणा शहर की गहन विरासत और आकर्षण के प्रमाण के रूप में आती है। अक्टूबर 2023 से ACD की अध्यक्षता कर रहे ईरान ने देखा कि यज़्द शहर जो किरमान और मशहद के मुकाबले में तरक्की कर रहा है, जिसने सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग के प्रतीक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। 35 सदस्य देशों के साथ ACD 2002 में अपनी स्थापना के बाद से आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने वाले एक प्रतिष्ठित मंच के रूप में खड़ा है। यज़्द की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा जो दुनिया के सबसे प्रमुख एडोब शहर के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थिति से रेखांकित होती है। इसकी नई भूमिका को और अधिक सुशोभित करती है और अपने वास्तुशिल्प चमत्कारों के लिए ये प्रसिद्ध है। यज अन्य आकर्षक शीर्षकों के बीच लैंड ऑफ विंड्स के रूप में गूंजते हुए ऐतिहासिक स्मारकों की एक टेपेस्ट्री को समेटे हुए है। ये प्रतिष्ठित मान्यता यज को वैश्विक सुर्खियों में लाती है। प्राचीन परंपराओं के संरक्षण और राष्ट्रों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पुल के रूप में इसकी विरासत का जश्न मनाती है।
तो दीदी, आपने जो है यज्ञ के बारे में जो खबर सुनाई है, जो हमारे श्रोताओं को भी और हमने भी सुनी है, वो बहुत ही आकर्षित खबर थी और दिलचस्प खबर थी। अब
सिर्फ
दीदी,
खबर ही नहीं, यज्ञ भी बहुत ही खूबसूरत शहर है।
बिल्कुल,
और
बिल्कुल।
वैसे बहुत सारे खूबसूरत शहर हैं, लेकिन ये जो है जैसे सांस्कृतिक विरासत के लिए बहुत ही अच्छा।
बिल्कुल
अच्छा,
बिल्कुल सही कहा आपने दीदी। तो दीदी, अब हम चलते हैं अपने श्रोताओं के पास वापस। ऐसे तो हम अपने के साथ ही हैं, लेकिन अब चलते हैं उनके जो कमेंट्स हैं, जो हमारी जो खबरें होती हैं उनके ऊपर जो कमेंट्स करते हैं, तो उसको देखते हैं कि आज हमारे किन किन श्रोताओं ने किन किन खबरों पर अपने कमेंट्स किए हैं।
जी, ज़ानी शासन के लिए ईरान का पैगाम, पूरे इलाके को सुरक्षित बनाने का हमारा मिशन रुकने वाला नहीं है। इस पर जमाल लिखते हैं, ज़ायोनी ईरान को फिलिस्तीन पर अपने औपनिवेशिक कब्जे में बाधा मानते हैं, विस्तारवादी नीतियां और क्षेत्रीय प्रभाव और शोषण, इसलिए सलाहकारों की हत्याएं होती हैं। इसका उद्देश्य ईरान को ज़ायोनी बुराइयों के खिलाफ उसके साहसी रुख के लिए डराना था।
देखिए दीदी, बहुत ही स्पष्ट है और दुनिया पूरी तरह से जान चुकी है कि इस वक्त जो अमरीका और जो कुछ पश्चिमी सरकारें हैं, उनका जो एक मोटिव स्टैंड है वो पूरी तरह से यही है कि वो जो करें वो सही है और दूसरा जो करे वो गलत है। आज ये दुनिया पूरी तरह से, ये भी दुनिया जान चुकी है, उसके लिए स्पष्ट हो चुका है कि गज़ा में जिस तरह से बच्चों को, महिलाओं को, बेगुनाहों को मारा जा रहा है, उनका नरसंहार किया जा रहा है, नस्ली सफाया किया जा रहा है, उसको दरकिनार करते हुए अमेरिका और उसके जितने भी पिछलग्गू देश हैं, जो शासन है, वो सब इस जंग को रुकवाने के लिए कोई भी गंभीरता से प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो इस बात को दर्शाता है कि वो इस हत्याओं में पूरी तरह शामिल हैं, उनकी वो राजी भी हैं और उसका समर्थन भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान, जो हमेशा कहीं भी युद्ध होता है तो ईरान का पहला जो बयान आता है आधिकारिक तौर पर, वो ये कि वो इस युद्ध के खिलाफ है, युद्ध नहीं होना चाहिए, कोई भी समस्या को का समाधान वार्ता के जरिए हल किया जा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें स्पष्ट हैं, दुनिया देखे कि ईरान हमेशा शांति की बात करता है, स्थिरता की बात करता है और युद्ध से हट के बात करता है। अमेरिका और उसके जितने भी सहयोगी हैं, आम तौर से ये देखा गया है, वो हमेशा युद्ध की बात करते हैं, युद्ध को बढ़ावा देने की बात करते हैं और हथियारों को बेचने की बात करते हैं।
जी, आतंकी इसराइली शासन को चेतावनी, गजा युद्ध से खाली हाथ लौटोगे। मोहम्मद हसन इस पर लिखते हैं, इसराइल शासन ने जो प्रदर्शित किया है वो उसकी अयोग्यता है। हमास के खिलाफ अपने लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थता के कारण सैन्य कमजोरी है और निर्दोष महिलाओं और बच्चों का कत्लेआम कर रहा है। स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, नागरिक वस्तुओं आदि को नष्ट कर रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल की विफलता के बाद इस क्षेत्र को छोड़ दिया है और अब वे वापस आ गए हैं। इसीलिए नहीं कि वे ताकतवर हैं, क्योंकि वे कमजोर हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं है। वे नागरिकों पर बम गिराते हैं, वे विदेशी शैतान हैं और लोगों को इस उम्मीद से डराना चाहते हैं कि जब तक मनोरोगी नरसंहार करेंगे तब तक वे वहीं रहेंगे, उन्हें हमारी जमीन पर रहने का कोई औचित्य नहीं है।
बिल्कुल, आपने सही बात कही है दीदी। तो चलते हैं, पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं।
Thank you.
तो दीदी, जैसा आपने अभी बताया था, जो हमारे प्रिय श्रोता ने कमेंट्स किया था हमारी खबर के ऊपर, तो उसमें एक बात ये जरूर हम ऐड करना चाहते हैं कि ये भी पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है, दुनिया जान चुकी है कि ये कितने बहादुर हैं जो महिलाओं को, बच्चों को, आम नागरिकों को, जिनका कोई लेना देना नहीं, बूढ़ों को, मरीजों को जो मार रहा हो, कत्लेआम कर रहा हो, नरसंहार कर रहा हो, उनकी बहादुरी के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। वो पूरी तरह से कायर लोग हैं और पूरी तरह से शैतान हैं। ये लोग वे लोग हैं जो मानवता के वास्तविक दुश्मन हैं इस धरती पर, और न केवल मानवता के बल्कि इस धरती के भी अगर कोई दुश्मन है, इस धरती को अगर कोई पूरी तरह से तबाह बर्बाद करना चाहता है, तो ये वही लोग हैं जो इस वक्त गजा में हर तरह के अपराध को अंजाम दे रहे हैं। तो दीदी, अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारे किस श्रोता ने, वो अब आप ही बताएंगी कि आज अपने विचारों को हम तक और हमारे अन्य श्रोता तक पहुंचाया है।
जी, ये है सीमा जैदी, तो चलते हैं इनके विचार सुनते हैं।
सबसे पहले हम आपको और जितने श्रोता में हमें सुन रहे सबको हम सलाम कहते हैं, और मैं आपकी हिंदी रेडियो से कुछ साल पहले ज्वाइंट हुई हूँ। मैं आपका प्रोग्राम रोज सुनती हूँ। जिस वक्त इत्तेफाक से मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी, उस वक्त ईश्वर चमत्कार आप प्रोग्राम दे रहे थे, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। इस वजह से मैं, इस प्रोग्राम की वजह से मैं आपके साथ ज्वाइंट हो गई। इससे बहुत सारे व्यूज मेरे क्लियर हुए हैं, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक्स आपके लिए, इस प्रोग्राम के लिए स्पेशली थैंक्स कहती हूँ। और फिर उसके बाद मैं कुछ टाइम और बैठी तो मैंने सुना उसमें न्यूज आप दे रही, और उसके बाद जो मैं अच्छी चीज लगी आपकी न्यूज लगी, क्योंकि आप जो न्यूज देती हैं वो आप बहुत रियल न्यूज देती हैं। किसी भी तरह की कोई भी आप पार्शलिटी नहीं करती, ना ईरान को ना इंडिया को, किसी भी कंट्री को लेकर नहीं कहती, बहुत अच्छी एकदम रियल न्यूज देती हैं। और आपकी लैंग्वेज भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ईरान से मैं हिंदी जबान सुनती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मेरी हिंदी जबान ईरान में भी पहुंच चुकी है। खाली वक्त में जब मैं नहीं सुन पाती हूँ, जब भी अपना काम करती हूँ, तो मैं आपकी साइट भी देखती रहती हूँ साथ ही साथ। और थैंक यू, और इंशाल्लाह मेरी दुआएं आप लोग के साथ हैं कि आप लोग कामयाबी हासिल करिए।
तो दीदी, हम सबसे पहले सीमा जैदी जी का जो है धन्यवाद करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, हमारे पास समय बिल्कुल नहीं बचा है, तो अपने भैया रविश जैदी और दीदी मरियम मेहरदादी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Thank you.